हम करते हैं सवाल अमीरे अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीरे अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा।
प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी मुन्नियों, सिलसिला मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया के जवाबात में हाजिर हैं। तमाम काम काज मौकूफ कर दें और मदनी चैनल की स्क्रीन के आगे रहिए। वुजू का अमली तरीका बगौर देखें और वुजू को सीखने की कोशिश कीजिए।
अब हम चल रहे हैं मदनी मुन्नों की तरफ। एक मदनी फूल आपको मैं पेश करना चाहूंगा।
कैसे हैं प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, आज आपने वुजू करके दिखाना है।
मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने और पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ।
मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे मदनी मुन्नो, इधर हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, लेकिन आपने अमीर अहले सुन्नत का जो अंदाज देखा है उस अंदाज से वुजू करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीसल्लाह वाला आलिका वसहाबिकया नूरल्ला। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम है, बकीले वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ फिर उसने मुझ पर दुरुद पाक ना पढ़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, सिलसिला मदनी मुन्नों के सवालात और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया के जवाबात में हाजिर हैं। और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको वुज़ू का अमली तरीका जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया ने करके दिखाया है, और उसी अंदाज से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे साथ दो मदनी मुन्ने भी मौजूद हैं, ये भी करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे मदनी मुन्नों ने किस अंदाज से समझने की कोशिश की, और आप भी बगौर देखें तमाम काम काज मौकूफ कर दें और मदनी चैनल की स्क्रीन के आगे रहिए और वुजू को सीखने की कोशिश कीजिए।
कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना।
हाथ धोने की बारी है। हाथ धोने का तरीका ये है, उंगलियों से शुरू करें और कोहनी समेत और अफजल है कि आधे बाजू तक धोए। कोहनी समेत तो फर्ज है और आधे बाजू तक मुस्तहब, और तीन बार सुनत। तो ये इस तरह धोएंगे तो ये एक बार हो गया, फिर यूं करेंगे तो दोबारा हो गया, मगर यूं ना करें कि हर बार उंगलियों से शुरू करना मुस्तहब है। ये इस तरह ये हाथ फेरते जाना भी मुस्तहब है। ये दो बार हो गया, फिर उंगलियों से शुरू करके ये तीन बार। ये कब है कि जब पानी रुक रुक कर मतलब आप धो रहे हैं, और अगर नल के नीचे रखकर धो रहे हैं, तो अब इसकी तफ्लीस का तरीका यह नहीं है कि आप तीन बार जिस तरह मैंने बताया उस तरह धोएं, बल्कि इसका तरीका यह है कि आप इतनी देर पानी में हाथ नल की धार के नीचे रखें कि जितनी देर में तीन बार धुल जाए, उसको ज्यादा देर नहीं लगती तीन बार धुलने को। आप हाथ फिरते रहेंगे इंशाल्लाह धुल जाएगा। मैं आपको अमली तरीका दिखा देता हूँ, गौर से देखिए। बिस्मिल्लाह, उंगलियों से शुरू करूंगा और इसको मैं इंशाल्लाह इस तरह, वो आपको लगेगा कि मैंने एक बार धोया लेकिन वो तीन बार धुलने तक इंशाल्लाह मैं वो उसको पानी के नीचे रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन बार आधे बाजू तक धुल गया। अब उल्टा हाथ भी इसी तरह धोना है। ये मुस्तहब है कि इसके पानी के कतरे टपका दिए जाए, कि बाद लोग हाथ धोने के बाद इस तरह चुल्लू में पानी लेकर फिर इस तरह तीन बार करते हैं, हाथ धोने के बाद करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसका कोई सुन्नत से ताल्लुक नहीं हाथ धोने के बाद करना, और पानी भी इससे इसराफ ही होगा, हाथ तो धुली अब इसके माना कुछ भी नहीं।
पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू कर कोहनियों समेत 3 बार धोइए, इसी तरह फिर उल्टा हाथ धोइए। अक्सर लोग चुल्लू पानी में लेकर 3-3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बह जाता है, इस तरह करने से कोहनी और कढ़ाई की करवटें पर पानी ना पहुंचने का अंदेशा है, लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। फतावा अहले सुन्नत गैर मतबूआ में फव्वारे या नल के नीचे गुसल करना जारी पानी में गुसल करने के हुक्म में है, लिहाजा इसके नीचे गुसल करते हुए वुजू और गुसल करते वक्त की मुद्दत ठहरा तो तसलीस 3 मरतबा की सुन्नत अदा हो जाएगी। चलते हैं मदनी मुन्नों की तरफ।
हमारे मदनी मुन्ने, जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया हाथ धोने का तरीका इरशाद फरमाया, उस अंदाज से हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, नियत कर लें कि जब भी हाथ धोएंगे जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत बाबा जानी ने हमें बताया, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसी अंदाज से हाथ धोने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल।
सर का मसह करना, जिसे लोग मसा कहते हैं,
हाथ सूख गए तो थोड़ा सा पानी लेकर हाथों को तर कर लीजिए, और मसा करना है मसह का तरीका देख लीजिए कि अगर यूं मसा किया जब भी हो जाएगा, ये अहनाब के नजदीक चौथाई सर का मसा फर्ज है, और मसह उसको कहते हैं कि पानी की तरी उस जगह पहुंच जाए जिस जगह को मसा करना है, मसह करने की जगह को पानी की तरी पहुंच जाए, धुलने की जरूरत नहीं सिर्फ तरी पहुंचानी है, और पूरे सर का मसह जो है वो सुन्नत है। इसका एक तरीका जो ये हो गया, लेकिन इस तरह आप करेंगे ना जब, तो ये उंगलियां अंगूठे ये भी बालों को लग जाएंगे, और ये मसला ज़हन में रखिए कि एक बार का तर किया हुआ हाथ या जो जगह एक बार जो तर किए और वो एक ही बार मसे में काम आएंगे, दोबारा दूसरी जगह उससे मसहा नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर आपने सर का मसा किया और इसके बाद कहीं पट्टी बंधी हुई है तो पट्टी पर आपने मसा किया तो अब मसा नहीं होगा, भले पानी की तरी है लेकिन चूंकि एक बार उस जगह से आप मसा कर चुके हैं दोबारा मसा के लिए वो कारावद नहीं, तो दोबारा उसको तर करना पड़ेगा। इसका दूसरा तरीका करके दिखाता हूं मैं, तो इस तरह आपकी शहादत की उंगली और अंगूठा बालों को लगेगा नहीं, तो कानों का मसा भी आप बासानी कर सकेंगे उसी पानी से, वरना अगर यूं पूरा जैसे मैंने करके बताया करेंगे तो दोबारा उंगली और अंगूठा तर करना पड़ेगा अगर बालों को लग गया है, तो फिर कान का मसा आप करेंगे वरना कान की सुन्नत रह जाएगी। तो एक बार सुन लेने से या देख लेने से आपके अमल में आ जाना जरूरी नहीं, इसको आपको कम अज कम 12 बार गौर से देखना है सारे वजू के तरीके में खसूस मसखा को, और फिर बेहतर यह है कि आपके साथ जो भी साई भाई हो साई बहन हो आप एक दूसरे को दिखाकर इसकी मश्क करें, बार बार ये एक दूसरे को करके दिखाएंगे देखो मैं सही कर रहा हूँ करी, तो इस तरह आप सीखेंगे, वरना सिर्फ देखने सुनने से बहुत मुश्किल है कि ये अमल हो, इसमें जज्बा चाहिए, बस जज्बा होगा इंशाल्लाह सीख जाएंगे। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लोग तो कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए तो हमको वुजू करना ही नहीं आता, तो वुजू करना कोई दुश्वार नहीं है इंशाल्लाह आप सीख लेंगे। तो मसा करने का तरीका देखिए, अब मैं मसा करके आपको दिखाता हूं, इसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं है, हाथ को तर करना है तो हाथ में जरूरत मैंने पानी ले लिया है आधा चुल्लू काफी है, ये तर हो गए, हथेलियां भी तर करनी थी, थोड़ी पुश्त भी तर कर ली मैंने क्योंकि इसकी पुश्त से मुझे गर्दन की पुश्त का भी मसा करना था, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तर हो गए। अब देखिए ये 3-3 उंगली ये इस पर आपने रखना है, शहादत की उंगली और अंगूठे की कैफियत देखने 3 उंगलियों को मैंने मिलाकर रखा है। अब इन 3 उंगलियों को जहां से बाल जमने शुरू हुए पेशानी के पास से आप इस तरह रखें कि हथेली के हिस्से तक ये सर से लग जाए इस तरह, और ये बीच की उंगली जो है ये देखो मिली हुई है, ये अलग नहीं होनी चाहिए सारे सफर में आपके मसे के। अब ये मैंने या आखिर तक उंगलियां मिली हुई रखनी है जितनी मिल सकती हैं, कम से कम एक उंगली तो मिली हुई रहे। अब ये पहुंच गई आखिरी बालों के हिस्से, अब आपने पलटना है, ये भी बीच के सर का मसा हुआ है, अभी जवानिब यानी साइडें बाकी हैं। अब हथेलियों की बारी है, उंगलियों की ड्यूटी खत्म हो गई और शहादत की उंगली और अंगूठा शुरू में भी नहीं लगे थे बालों पर और अब भी नहीं लगेंगे, तो अब ये इस तरह आपने पलटना है हथेलियों के जरिए। अब ये जो उंगलियां थी तीन तीन जो लगाई थी वो नहीं लगेंगी, सिर्फ हथेलियां, और इस तरह आप जंप देकर नहीं लाएंगे, बाल लोग जंप देकर लाते तो बाल मसे से महरूम रह जाएंगे। ये इस तरह बिल्कुल हर वक्त हथेलियां जो है आखिर तक सर से लगी रहेंगी, इस तरह ये आखिर तक ले आया। अब ये हो गया सर का मसा। अब शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करेंगे और अंगूठे से कान के बाहरी हिस्से का मसा करना है, इसका तरीका देख लीजिए। शहादत की उंगली से इस तरह कान के आप सुराख पर रखिए और घुमाते हुए कानों के जो भी वो खांचे और नशेब व फराज हैं उन पर आप इनको फिरा दीजिए। ये कान के अंदरूनी सतह का हो गया। अब अंगूठे से कान की बाहरी सतह का मसह, ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कानों के मसे हो गए। अब आपको उंगलियों की पुश्त से गर्दन की पुश्त का मसह करना है, पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। अच्छा, अब बाद लोग जो है वो गले का मसा करते हैं, तो ये सुन्नत नहीं है।
अमीरे अहले सुन्नत से अर्ज है, जिस तरह आपने हमें मसा करने का तरीका अभी बताया है, आम लोग तो इस तरह करते हुए नजर नहीं आते।
दरअसल इल्मे दीन से दूरी और अच्छी सोहबतों से दूरी है, मुताला करने का जहन नहीं बने, किताबों में सब लिखा हुआ है। आवाम तो बस बेचारे आमतौर पर मसा इस तरह करते देखे जाते हैं। मैं आपको वो गलत तरीका जो है वो बताता हूँ, जिस तरह करते हैं। हाथ बाकायदा धोते हैं, हाथ जैसे पानी लेंगे हाथ में, और अब वो फिर वो पता नहीं अंगूठे चूंडे का यहाँ कोई सिलसिला है, वजह नहीं पता तो ये कैसे चल गया। तो हाथ में पानी लिया, फिर यूं करेंगे, आवाम यूं करते, ये बिल्कुल यानी कि गैर सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो मैंने जो अर्ज किया वो सुन्नत भी है उसमें और मुस्तहब भी उसमें आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे।
अब नल बंद करकर सर का इस तरह मसा कीजिए कि दोनों अंगूठे और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की तीन तीन उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी की तरफ इस तरह ले जाएं कि हथेलियां सर से जुदा रहें, फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक लाइए। कलमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलमे की उंगलियों से कानों के अंदरूनी सतह का और अंगूठों से पानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए और चुंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराख में दाखिल कीजिए और उंगलियों के पुश से गर्दन के पीछे हिस्से का मसा कीजिए। चलते हैं मदनी मुन्नों की तरफ। ये भी याद रहे, सर पर मसा करने का एक तरीका ये बिलखुसूस इस्लामी बहनों के लिए ज्यादा आसान है। मसहे सर में अदाए सुन्नत को यह भी काफी है कि उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखिए और हथेलियां सर की करवट पर और हाथ जमाकर गुद्दी तक खींचते ले जाइए। समेत दोनों पांव धोना।
अब पांव धोने की बारी। पहले सीधा पांव धोना सुन्नत, फिर उल्टा, और इसका भी हाथ के अंदाज पर तरीका है। जिस तरह हाथ को उंगलियों से शुरू किया था उसको भी उंगलियों से शुरू करेंगे, और उंगलियों से शुरू करके टखने तक एक बार धोएंगे, फिर दोबारा उंगलियों से शुरू करेंगे। यूं नहीं धोएंगे वरना ये दो बार हो जाएगा, और यूं अगर यूं धोएंगे तो पांच बार हो जाएगा। तीन बार जिसको समझते हैं लोग वो पांच बार होता है। तो उंगलियों से शुरू किया तो फिर उंगलियों पर आएंगे, ये धो लिया फिर उंगलियों पर आएंगे, इस तरह ले जाएंगे। अब चूंकि नल की धार तो बहता पानी है तो इसलिए इसमें इतनी देर पांव रख देना कि तीन बार धुलने जितना वक्त बहते पानी में पांव को छोड़ देना, ये इससे सुन्नत तस्नीस की अदा हो जाएगी, फर्ज भी अदा हो जाएगा, तीन बार धोने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो अब मैं आपको सुन्नत की तस्नीस अदा करके बताने की कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह उसमें तीन बार हो जाएगा, उतनी देर में ये मेरा पांव धुलेगा। बजाय आपको एक बार धुलना नजर आएगा लेकिन दर हकीकत वो तीन बार हुआ। आधी पिंडली तक धोना जो है ये मुस्तहब है, तो मैं आधी पिंडली तक ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन बार हो गया। और खिलाल करना सुन्नत है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करना है। ये खिलाल भी हो गया। अब इसी तरह उल्टा पांव धोना है लेकिन खिलाल में अंगूठे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह पांव धोने के बाद, मगर नल बंद होना चाहिए खिलाल करते हुए। देखो ये उंगलियों के तलवे जो है ना, इसके उंगलियों के जोड़ पोरे वगैरह होते, इसकी धारियां सर्दियों में ज्यादातर सूखी रहने का इम्कान देता है, इसलिए धारियों में पानी बहुत एहतियात से बहाना होगा। ये उंगलियों को भी कुशादा कर करके इनके बीच में पानी डालना होगा। सर्दी में भी गर्मी में भी फर्ज है धोना उन हिस्सों का भी। ये भी आधी कुंडी तक धुल गया तीन बार अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका भी खिलाल यहाँ, अब उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू करेंगे, उल्टे ही हाथ की छोटी उंगली। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पांव धुल गए।
पहले सीधा फिर उल्टा पांव हर बार उंगलियों से शुरू करकर टखनों के ऊपर तक तीन तीन बार धो लीजिए। दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। इसका मुस्तहब तरीका यह कि उल्टे हाथ की चुंगलियों से सीधे हाथ की चुंगलियों का खिलाल शुरू करकर अंगूठे पर खत्म कर दीजिए, और उल्टे ही हाथ की चुंगली से उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू करकर चुंगलियों पर खत्म कर लीजिए। चलते हैं मदनी मुन्नों की तरफ।
अब ये देखें पांव सीधा पांव धो चुके हैं, अब ये उंगलियों का खिलाल कर रहे हैं। पांव धुल चुका है सीधा, अब हमारे मदनी मुन्ने उंगलियों का खिलाल कर रहे हैं। अब सीधा पांव धो चुके हैं, अब उल्टे पांव की जानिब आ रहे हैं हमारे मदनी मुन्ने। पांव धो रहे हैं हमारे मदनी मुन्ने। अंदाज तो वही अपनाया है जो अमीर सुन्नत ने बताया है, लेकिन हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन ये मदनी मुन्नों का भी आपने अंदाज देखा, लेकिन आपने जो याद रखना है वो अमीर सुन्नत का अंदाज याद रखना है। ये तो हमने इस तरह करके दिखा दिया कि मदनी मुन्ने देखते हैं किस तरह अमली वजू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए। और ये जो सिलसिला आज आप देख रहे हैं इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप ये वजू का अमली तरीका डाउनलोड कर सकते हैं।
वजू के बाद के मदनी फूल।
अब आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ेंगे, और जो आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा शहादत पढ़ता है उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते हैं। اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। سورہ قدر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر وضو کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر ونزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر۔ یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین۔ مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑھایا ہے واجعلنا من عبادک الصالحین۔ ایک دعا یہ بھی پڑھی جاتی ہے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب وضو کر لیا، ظاہری اعضا دھل گئے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی وضو بھی کیجئے۔ باطنی وضو یہ کہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ گھر کے باہر سے تو رنگ روغن کر دیا اور اندر گند کچرا بھرا ہوا ہے۔ تو ظاہری وضو کی مثال امام غزالی نے یہی دی کہ ظاہری طور پر اعضا دھل گئے اور اندر وہی باطن میں گناہوں کا میل بھرا چھوڑ دیا، تو توبہ استغفار کے ذریعے باطنی وضو بھی کیجیے۔
حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، کلمہ شہادت پڑھنا ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں۔ کم از کم ہم کلمہ شہادت پڑھیں گے اور نگاہ اٹھا کر کلمہ شہادت، صرف نگاہ اٹھانی، ہاتھ وغیرہ کچھ نہیں اٹھانا۔
جی، ہمارے مدنی منے نے جو ہے دوسرا کلمہ پڑھا، اور اس کی فضیلت جیسے کہ آپ نے امیر السنت سماعت فرمائی۔ کلمہ پڑھنے کی عادت بنائیں کہ وضو کے بعد جو کوئی دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ وضو سے فارغ ہوں تو اس کلمہ شہادت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل یہ فضیلت کی برکت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جی اماد بھائی، ہمارے مدنی منوں نے وضو کا تو شاید طریقہ سیکھ لیا ہوگا، اب کیا آپ بتانے جا رہے ہیں؟
دیکھیں، نماز، وضو، غسل، ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، کپڑے پاک کرنا بھی آنے چاہیے۔ بچے پیشاب بھی تو کر دیتے ہیں، اب کپڑے پاک کرنے کے، دیکھیں اس میں ہیں بہت ساری باتیں۔ ہم صرف یوں سمجھیں کہ اگر کپڑے پر پیشاب لگ گیا تو کپڑے کیسے پاک ہوں گے، اس کے تعلق سے میں چند مدنی پھول آپ کو بیان کرتا ہوں امیر علیہ سنت کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سے، پھر اس کا عملی طریقہ ہمارے مدنی منے خود کپڑے پاک کریں گے۔
ارے واہ بھائی واہ۔
اس کے صفحہ نمبر 26 پہ مدنی پھول ہے، اگر نجاست رقیق یعنی پتری جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ باقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا، اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس کا اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑا پاک نہ ہوگا۔ دکھاتا ہوں، مثال ہے یہ حصہ
جی
اس کو ہم پاک کر رہے ہیں, یہ دیکھیں
یہ نچوڑ لیا
یہ
اپنی طاقت ہے
اور یہ آپ نے اب آپ میری طاقت میں یہاں پر آ کر کہہ دیا بس بریک.
کوئی آپ سے زیادہ طاقتور آلہ آتا ہے
وہ الگ بات ہے, آپ جیسا طاقتور ہو تو الگ بات ہے. تو یہ بہرحال اس طرح کی جو صورتحال ہے اس طرح ہے, لیکن یہاں ہم اور تفصیل بھی ہے. یہ تو آپ کو ایک بات بیان کی ہے. ہمارے عام طور پر ہوتا ہے یہ بپو کہ ہم نا ٹوٹی سے نل سے کپڑے پاک کرتے ہیں نا, اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے. اس میں اور بھی مدنی پھول ہیں, لیکن ہم نے چونکہ نل سے پاک کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے اور تو اس اعتبار سے ہم بیان کر رہے ہیں. فتاوی امجدیہ جلد ایک صفحہ 35 پر ہے کہ یہ یعنی تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا اور اگر حوض کبیر یعنی دا دردا یا اس سے بڑے حوض نہر ندی سمندر وغیرہ میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہا دیا, دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں ہے. فتاوی امجدیہ جلد ایک صفحہ 35 پر ہے کہ یہ تین مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا اور اگر حوض کبیر یعنی دا دردا یا اس سے بڑے حوض نہر ندی کا یہ مطلب نہیں جو گٹر کی ندی نالے ہوتے ہیں, پانی جو پاک پانی کی ندی ہوتی ہے پنجاب کے اندر ہوتا ہے, سمندر وغیرہ میں دھویا یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں. ایک اور مدنی پھول
ٹھیک ہے.
فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دے پاک ہو جائے گا, اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا پاک ہو گیا کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں ہے. یہ سمجھیے گیلا ہو گیا ٹھیک ہے, اب یہ جو گیلا ہے نا یہ سمجھیں یہ پیشاب لگا ہوا ہے ناپاک ہے, تو اب اس کو جو پاک کرنا ہے نا وہ یہ ہے, آپ نے یہ مثال یہاں رکھ دیا یہ یہاں رکھا, ٹوٹی کھولیں گے آپ اور اتنی دیر تک پانی بہے کہ آپ کو گمان ہو جائے کہ جتنی ناپاکی اس میں پیشاب وغیرہ لگا تھا وہ ختم ہو گیا وہ نیچے چلا گیا, جب آپ کو ذہن بن جائے کہ اتنی دیر میں یہ کپڑا پاک ہو گیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کا گمان ہو گیا کہ سارا پانی چلا گیا, سارا کچھ جو لگا ہوا تھا چلا گیا, تو بس ہے یہی کپڑا پاک ہے, بھلے اس میں سے ٹرپٹ بھی رہا ہو بھلے اس میں کچھ بھی ہو رہا ہو. یہ لیجیے اس ناپاک کپڑے کو پاک کریں.
پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم نے عملی طریقہ جو آپ کو دکھایا کہ بالٹی رکھ کر کے پانی ضائع نہ ہو, کیونکہ وہ جو کپڑا تھا وہ پہلے سے ہی پاک تھا, لیکن اس کا عملی طریقہ کر کے آپ کو دکھایا گیا.
اور پانی بھی مسجد کا نہیں ہے, گھر کا,
گھر کا پانی ہے, اجازت لے لی تھی. اب یہ پانی جو ہے یہ بھی صاف پانی ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے بالٹی نہیں رکھنی ہے. اگر ناپاک کپڑے کو آپ پاک کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسی طرح بالٹی رکھیں بعد میں استعمال کر لیں, کیونکہ یہ پانی جو ہے ناپاک ہو گیا, اس کو نالی وغیرہ میں جو ہے بھیجانے دیں.
تو اب کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یعنی سمجھے نماز کے اندر نمازی کا بدن لباس جگہ کا پاک ہونا, ہم نے لباس پاک کا بتایا, اب چیزیں اور ہیں غسل کے بھی کچھ مسائل, تیمم کا طریقہ اور نماز کا عملی طریقہ.
تیمم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے.
جی تیمم بھی مدنی منوں کو سکھائیں گے. بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز میں دو تین منٹ باقی ہیں, مدنی منے اٹھے اب انہوں نے فجر پڑھنی ہے تو یہ وضو کریں گے تو وقت ہی نکل جائے گا, تو یہ تیمم کر کر نماز پڑھیں گے.
اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو آپ تیمم کر بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں بھی.
اگر مدینے جا رہے ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے, رستے میں سفر ہو رہا ہے, تو مدینے کے سفر میں مدینے کی مٹی سے تیمم کر رہے ہوں گے, نمازیں پڑھ رہے ہوں گے.
ہم کرتے ہیں سواج امیر اہل سنت, دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت, مرشد کا جواب.